Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें कुछ अच्छा कार्य करना है या कुछ अच्छी बातें सुनना है तो हमें सत्संग में जाने की जरूरत है। सही मायने में सत्संग का अर्थ ही होता है सत्य का संग। अगर हम इस बात को जान जाएं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है उसमें भी बदलाव आने लगेगा। तो आइए जानते हैं हम डॉक्टर अवधीश शर्मा जी के साथ में कि किस तरह से अपनी जिंदगी में सत्य के संग को सदा साथ रखें। अवधीश शर्मा जी जो कि 30 ईयर्स से साइकैट्री को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच, प्लेजर।
डॉक्टर साहब, हमारी पूरी सीरीज ऑलमोस्ट समापन पर आ रही है। हमने ये जाना कि किस तरह से यूथ एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। हमने ये भी जाना कि किस तरह से वो जो यूथ सोशली एक्टिव रहना चाहते हैं उनके लिए कौन से तरीके हैं सोशली एक्टिव रहने के लिए। हमने ये भी जाना कि उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ अपने अंदर के कुछ संकल्पों को बदलने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, यूथ के अंदर में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। वो जानना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, जो कि एक नई बात आज के जनरेशन में हम देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे मैं भी अगर अपनी बात करूं एज अ यूथ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी है क्या। अगर हमें उसकी सही परिभाषा पता चल जाए तो उसे अपनाने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। ऐसे में आपकी क्या राय है?
देखिए, किसी चीज़ की अगर हम सिर्फ परफेक्ट परिभाषा को ही देखने की कोशिश करते हैं तो जो उसका मीनिंग है या जो उसकी अनुभूति है वो कहीं ना कहीं हाथों से फिसल जाती। बहुत से लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को हर परफेक्ट सेंस से देखकर डिफाइन करने की कोशिश की है। उसके जो कुछ चीज़ें उभर के आई हैं
जी,
उसमें एक तो ये है कि जो भौतिक दुनिया से या भौतिक शरीर से हटकर है, इंग्लिश में उसको मेटाफिजिकल बोलते हैं, यानी फिजिक्स जो कि फिजिकल वर्ल्ड है उसका ही एक अंश, लेकिन उसमें मिला हुआ नहीं। दूसरी जो चीज़ उभर के आती है कि वो रोज़मर्रा के जीवन से थोड़ा सा हटकर है।
अच्छा।
तीसरी चीज़ जो उभर के आती है कि वो देखने में नहीं आती लेकिन महसूसता में आती। चौथी चीज़ जो उसके बारे में जो कि आमतौर पे देखने में या कहने में या सुनने में या महसूस करने में लोगों ने व्यक्त की है कि वो एक ऐसी डायमेंशन है जिसको हम महसूस तो करते हैं लेकिन जिसकी महसूसता जब कम हो जाती है तभी उसकी महसूसता का एहसास होता।
So true.
एक तरह से कॉन्शियसनेस के बारे में यहाँ पर एक डायमेंशन को लाया जाता है
जी।
कि जो भौतिक चीज़ों को चलाता है, जो खास तौर पर हमारे शरीर को चलाता है
जी,
वो कॉन्शियसनेस जो कि रोज़मर्रा के जीवन से थोड़ी सी हटकर है लेकिन उसके मिश्रण में है, उसे स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे हायर सेल्फ बोलते हैं, कुछ लोग इसे गॉडहुड के नाम से कहते हैं, यानी जो लोग विश्वास करते हैं कि हमारे से ऊपर भी एक पावर है।
बिल्कुल।
और वो पावर जो है उसके गुण जो हैं वो बहुत प्योर हैं और उन गुणों को हम अगर अपना लें तो हम उसकी रिफ्लेक्शन बन जाएंगे।
बिल्कुल।
तो वो जो एक कंपोनेंट है हायर पावर का, लेकिन हम अगर चाहें तो अपनी हाईएस्ट पावर को उस हायर पावर के आसपास ला सकते हैं। तो वो जो एक सेंस है जो कि जब हम महसूस करते हैं चाहे वो हमारे अंदर के कुछ गुण हो, और वो गुण जो हैं वो भौतिक रूप से नहीं है, मैं अच्छा बोलता हूँ वो नहीं, लेकिन मैं किस सोच में बोलता हूँ, मैं किस कॉन्शियसनेस में बोलता हूँ, मैं किस चीज़ को महसूस करता हूँ जब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ या सुनता हूँ या चखता हूँ। तो वो जो एसेंस है उसको स्पिरिचुअलिटी का नाम दिया जाता
है। करेक्ट।
रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी आमतौर पे अलग अलग मानी जाती हैं। रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे रिलीजन सिर्फ स्पिरिचुअल हो।
करेक्ट।
क्योंकि रिलीजन के अंदर कई तरह के रिचुअल्स, कई तरह की और चीज़ें, कई तरह के बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, वो भी आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली जीवन को क्या चलाता है और वो जो एसेंस है उसको हम कैसे पाएं, उसके बारे में परिभाषाएं हैं।
okay.
और उसको पाने के तरीके
जी,
आमतौर पे फर्स्ट स्टेप है नॉलेज, उसके okay. बारे में जानना
जी।
तो जो एक एटर्नल क्वेश्चन हमेशा से आया कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और इस समय मेरा पर्पज़ यहाँ पे होने का क्या है।
एग्जैक्टली
exactly. तो वो एक नॉलेज, और उसी के साथ की एक नॉलेज कि मेरी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरे क्या क्या गुण हैं, और मैं उन गुणों को कैसे पा सकता हूँ।
करेक्ट।
फिर सेकंड स्टेप आता है जिसमें कि हम उन गुणों को अपने अंदर धारण करने की बात करते हैं।
जी,
आपको पता लगा कि कोई हार बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो वहाँ पर है, टेबल पर है, जब तक आप उसे डालेंगे नहीं, आप उसे महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो अच्छा नहीं लगेगा आपके शरीर पर।
बिल्कुल।
तो उसी तरह से जो हमारे अंदर की अनुभूतियां हैं, अगर हम उस नॉलेज को उनको बढ़ाने में लगाएं, तो वो धारणा हो।
डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि यूथ हमेशा प्रूफ चाहती है, उससे पहले वो किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते। मैं ये बात को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रही हूँ कि ज़िंदगी में अगर स्पिरिचुअलिटी कुछ हद तक भी है तो हमारी ज़िंदगी का मीनिंग है। ये चीज़ अगर यूथ को पता चल जाए कि हम हर चीज़ को कैलकुलेटिव वे में नहीं ले सकते, कुछ चीज़ें महसूस करने के लिए होती है, अगर हम उन्हें महसूस करें तभी हम उसका रस जान सकते हैं, ये बात किस हद तक सच है?
देखिए, किसी चीज़ की महसूसता जो आपने कही या प्रूफ भी जो कहा, आज से कुछ वर्ष पहले तक माइक्रोस्कोप्स नहीं होते थे।
ट्रू।
तो हम जो देखते थे सिर्फ उतना ही था, शरीर के अंदर भी कुछ और नहीं था। जब माइक्रोस्कोप आए तो हमने चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा होके देखना शुरू किया।
बिल्कुल।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए।
करेक्ट।
तो हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को भी देखना शुरू किया।
बिल्कुल।
तो क्या उससे पहले मॉलिक्यूल्स नहीं थे? हम देख नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी।
जी।
उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि मुझे तो आपकी किडनी नहीं दिख रही, आपका लिवर नहीं दिख रहा, आपका हार्ट भी नहीं दिख रहा, ब्रेन भी नहीं दिख रहा, तो आप कैसे चल फिर रहे हैं, कैसे आप का हार्ट बीट कर रहा? लेकिन अगर मैं इसे खोलूं तो फिर मुझे पता लग जाएगा।
बिल्कुल।
तो उसी तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको पहचानना जो नॉर्मल सेंसेस हैं उनके द्वारा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा सेंसेस चाहिए। इसीलिए एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहा जाता है, जिसका मतलब है कि हम उन अनुभूतियों को जो पांच हमारे इंद्रियां हैं उनके परे उनको नाप सकते हैं। आपके अंदर कई तरह के इमोशंस चल रहे हैं, मैं इमोशंस को देख नहीं सकता, लेकिन आपके चेहरे पे जो अनुभूति आती है उसको देख सकता हूँ, जो आप अंदर महसूस करते हैं उनको देख सकता हूँ। तो उस हिसाब से अगर हम कहें कि इमोशंस भी नहीं है, मुझे दिखते तो नहीं है, अगर हम दिखने की बात करते हैं तो वो व्यक्ति जो ब्लाइंड हैं उनको तो कुछ भी नहीं दिखता, तो क्या ये दुनिया ख़त्म है?
नहीं।
अगर किसी व्यक्ति के उम्र के साथ कई बार, और कई बार बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो पैदा ही उस रूप में होते हैं, अगर उन्हें ये दुनिया में जो शोर है या साउंड्स हैं या आवाज़ें हैं वो नहीं सुनती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आवाज़ें बंद हो गई। सिर्फ ये है कि उनकी परसीव करने की पावर डिफरेंट है।
बिल्कुल।
उसी तरह से अगर हम सिर्फ एक सेंस की ही बात करें तो हमें जितनी फ्रीक्वेंसी सुनती हैं उससे कहीं ज़्यादा कुत्तों को सुनती हैं।
अच्छा।
इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ्रीक्वेंसीज नहीं हैं, सिर्फ ये है कि जो हमारे एपरेटस हैं उनको पिक करने के वो नहीं है। और समय के साथ साथ बहुत लोगों ने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है कि जब हम किसी चीज़ की चीज़ों को ढूंढते हैं, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, जिस दिन आपको पेट में दर्द है और आप रोड से गुजर जाते हैं तो आपको सिर्फ केमिस्ट की दुकानें दिखती हैं।
रियली?
ट्राई कर लीजिएगा। क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ केमिस्ट की दुकानें ढूंढने पे।
ओके।
उस दिन आप रेस्टोरेंट्स को मिस कर जाएंगे।
अगर हम घर से ही निकले मेडिकल के लिए जाने के लिए तो हमें मेडिकल शॉप्स ही नजर आएंगे। Am I right?
जी जी। Okay. अगर पेट में दर्द है जैसे मैंने कहा
जी,
तो आपको मेडिकल शॉप्स नजर आएंगी, हॉस्पिटल्स नजर आएंगे।
बिल्कुल।
लेकिन अगर आप भूख लगी है तो उस दिन आपको रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे।
बिल्कुल।
तो हमारा मन जिस चीज की खोज कर रहा होता है वो हमारी जो सेंसेस हैं वो ज्यादा ट्यून हो जाती है। और ये कई बार देखा गया है कि वो व्यक्ति जो देख नहीं पाते उनकी सेंस ऑफ टच जो है, उनकी सेंस ऑफ हियरिंग जो है, उनकी सेंस ऑफ फीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती
है।
उसी प्रकार से अगर हम सिर्फ भौतिक चीजों में फंसे रहते हैं तो बाकी चीज़ें कम हो जाती हैं, लेकिन अगर हम उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उसकी अनुभूति हमें अंदर से हो सकती है। और मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ का प्रमाण होना चाहिए।
प्रमाण मतलब?
प्रमाण मतलब उस चीज़ की कोई बेसिस होनी चाहिए।
ओके, बेसिस।
आपने जो कहा कि यूथ जो है वो लॉजिक चाहता है।
बिल्कुल।
तो उसको पहले खुद एक्सपीरियंस करें।
बिल्कुल।
और अगर वो एक्सपीरियंस आपके लिए सही हो, सुखद हो, उससे आपको सुकून मिले, उससे आपका जीवन सुधरे, तो वो जो भी चीज़ है वो एक डायमेंशन है जिसे आप पहले मिस कर रहे थे, अब उसको अपना लें। उसकी डेफिनेशंस में अगर हम जाने की कोशिश करेंगे, उसका प्रमाण चाहेंगे, तो मैं तो कहूँगा कि कुछ खाने से पहले भी प्रमाण होना चाहिए कि वो आप अंदर जाके पच जाएगा नहीं। हम एक्सपीरियंस के साथ ये कहते हैं कि मैंने खाया वो पच गया और मुझे शक्ति मिली
जी।
उसी प्रकार से अगर मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, सही प्रकार से करता हूँ, उसके बाद अगर मुझे शक्ति मिलती है तो वो मेरे लिए प्रमाण है।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, स्पिरिचुअलिटी जितना मैं अभी तक इस बात को समझ पा रही हूँ आपकी भाषा से, कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल जीने का एक दूसरा नाम है। एज ए यूथ हमें अगर पता चल जाए कि कोई ऐसे परहेज है जो करने पड़ते हैं जिससे आप मेडिटेशन में और ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन कर सकता है, क्योंकि अभी हमारा ये पूरा एपिसोड प्रैक्टिकल अप्रोच टू मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है
जी।
हमने प्रूफ्स इकट्ठा कर रहे हैं कि किस तरह से हम मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का सबसे सरल हिस्सा बना दें जिससे हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर होने लगे। तो ऐसे में आपके हिसाब से प्रैक्टिकली मेडिटेशन को कैसे अपनी ज़िंदगी में लाया जाए?
देखिए, मैं एक और बात यहाँ पे कह देना चाहूँगा कि जो मेडिकल साइंस अभी तक जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानती, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से खासतौर पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनमें कि स्पिरिचुअलिटी बेस्ड इंटरवेंशन जिनको हम बोलते हैं, चाहे वो कुछ टेक्निक्स ऑफ ब्रीदिंग है, चाहे वो योगा है, पर ख़ास तौर पे मेडिटेशन है, उसके ऊपर जो आंकड़े सामने आते हैं, या प्रेयर्स का रोल जो है वो हीलिंग के अंदर जिनको हम दुआएं बोलते हैं, वो फिजिकल इलनेसेस पे और मेंटल इलनेसेस पे उनका किस तरह से सकारात्मक रोल हो सकता है, वो चीज़ें सामने आई हैं। और बहुत सारी बॉडीज़, इंटरनेशनल बॉडीज़ जो मेडिसिन के साथ भी जुड़ी हुई हैं, मेंटल हेल्थ के साथ भी जुड़ी हुई हैं, वो अब एक स्पिरिचुअलिटी को अभिन्न हिस्सा जीवन में लेके चलने की बात कर रहे हैं, ताकि व्यक्ति की कंप्लीट रिकवरी हो सके।
ओके।
जहाँ तक आपने ये बात कही कि क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं,
बिल्कुल,
देखिए अगर आप कोई भी चीज़ शक के साथ या हेजिटेशन के साथ या बहुत ज़्यादा डाउट के साथ शुरू करेंगे तो फिर आप उस डाउट में फंसे रहेंगे क्योंकि माइंड उसी चीज़ में फंसा हुआ।
बिल्कुल।
तो एक कुछ समय के लिए एटलीस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि आपको ये समय मिला, ये मौका मिला जिसमें कि आप बैठ के अपने लिए कुछ समय निकाल भी पाए और अपने बारे में चिंतन कर पाए। दूसरा, हालांकि कई तरह की टेक्निक्स हैं, कुछ हैं जिनमें कि लोग सिर्फ मंत्रा का उच्चारण करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मुंह में ही वो बात करते हैं, कई लोग सिर्फ मन के अंदर ही वो चीज़ सोचते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक हैं जिसमें कि शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान लगाया जाता है। मैं कहूँगा वो सतही टेक्निक्स हैं, उनमें कुछ फ़ायदे ज़रूर होते हैं कि रिलैक्स इंसान ज़रूर हो जाता है, लेकिन अगर हम जीवन में बदलाव लाने की बात करते हैं
जी,
तो प्रैक्टिकल तरीके से किस रूप से हम अपने मन के ब्लॉक्स को देखकर उन्हें स्पिरिचुअलिटी में रिमूव कर सकते हैं।
बिल्कुल।
आई वुड से ये एक तरह से अपनी कॉन्शियसनेस को सशक्त करने की बात है। कॉन्शियसनेस को, शारीरिक और मानसिक ब्लॉक्स को धीरे धीरे खोलने का मौका देने की बात है।
करेक्ट।
वैसे भी एक और चीज़ जो कि अब उभर के आ रही है कि शरीर और मन दोनों इकट्ठे होते हैं और साथ में ही वो लोग एटलीस्ट जो मानते हैं कि आत्मा है उसका समावेश है, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन जो उठता है कि कौन सा प्राइमरी है, शरीर ने आत्मा को बनाया या आत्मा ने शरीर को।
ट्रू।
वहां पर एक बात जो समझ आती है कि शरीर बार बार चेंज हो रहा, रोज चेंज हो रहा, जो हम खा रहे हैं, जो हम ब्रीद कर रहे हैं, जो शरीर से निकल रहा है उसके हिसाब से एक नया शरीर धीरे धीरे बनता रहता है। उसको सही दिशा देने वाला जो है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एंड अवर सब कॉन्शियस माइंड, माइंड जो है वो एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो कि शरीर के हार्डवेयर के साथ काम करके एक नए प्रिंट को बनाता है, एक नई लैंग्वेज लिखता है, और वो लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज नेगेटिव होगी यानी डिजीज्ड होगी या हेल्दी होगी वो हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिसाइड करती है।
करेक्ट।
तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस सशक्त होगी, अगर हम आत्मिक रूप से ज़्यादा सशक्त होंगे तो सिर्फ हम अपने पुराने ब्लॉक्स को ही नहीं हटाएंगे लेकिन धीरे 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 हम हेल्थ की ओर भी बढ़ते जाएंगे।
करेक्ट।
और यही पाया जा रहा है कि वो लोग जो कि किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस करते हैं या मेडिटेट करते हैं तो एक बात तो ये है कि अलग अलग तरह की बीमारियाँ जो हैं उनका असर उन पर कम होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर वो प्रॉब्लम है भी तो भी वो अपने आप को शरीर से ऊंचा उठा महसूस करते हैं, वो उसमें फंस नहीं जाते, और उस वजह से उनकी जो महसूसियत है उस बीमारी की वो कम महसूस होती है। और उसी कारण से चीज़ें होने के बाद भी या अपने आसपास तकलीफें होने के बाद भी और कई बार फिजिकल इलनेसेस होने के बाद भी वो स्टेबल रह सकते हैं और साथ ही साथ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें उनको मदद करती हैं, चाहे वो अटेंशन है या ज़्यादा देर तक कंसंट्रेशन करना है या मेमोरी इम्प्रूव करने की चीज़ है या रिश्तों की बात है, वो चीज़ें भी जो हैं वो लगातार मेडिटेटिव लाइफस्टाइल जीने से बेहतर हो सकती है।
करेक्ट। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखा गया है कि हम चाहते तो हैं कि एक ऐसा स्टेप उठाएं जिससे हमारी ज़िंदगी और मीनिंगफुल हो जाए, एज ए यूथ मैं बोलना चाहूँगी, लेकिन सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं होते, शायद हमारे घर का माहौल ही वैसा ना हो, हम ज़्यादा भगवान में बिलीव ही नहीं करते, शायद हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा धार्मिक नहीं हैं, तो अगर हम पहल कर रहे हैं मेडिटेशन करने का तो हमें उनका सपोर्ट भी नहीं मिलता, ऐसा भी कई बार देखा जाता है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर जाने से रोकते भी हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मेरा बच्चा धार्मिक हो जाएगा तो वो शायद संन्यास बन जाएगा। ये जो चीज़ है, इस सोच को कैसे बदला जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो भी कोई भी तरह की स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो वो सन्यासी ही बन जाते हैं, ये तो बात सच है नहीं। जबकि हम अपनी ही ज़िंदगी को अपने तरह से जीते हुए उसे और आसान बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अपने पेरेंट्स को भी कैसे जागरूक किया जाए और उन्हें भी साथ में लेकर स्पिरिचुअलिटी को अपनाया जाए, कैसे पॉसिबल है?
स्पिरिचुअलिटी धर्म नहीं है।
अच्छा,
स्पिरिचुअलिटी धर्मों का बेसिस हो सकता, लेकिन बाय इटसेल्फ स्पिरिचुअलिटी कोई धर्म नहीं है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ जीवन को देखने का एक नजरिया है।
okay.
जिसमें आप सिर्फ भौतिक जीवन में ना फंस के उसका जो एसेंस है उसको सही रूप से देखते हैं, आंकलन करते हैं और जीवन को उस लेवल से मापते हैं।
अच्छा,
उसी बात की पेरेंट्स को साथ लेके जरूर चलना चाहिए, लेकिन कई बार आप में जब कुछ बदलाव आते हैं तो पेरेंट्स भी उन बदलावों को देखते हैं।
ट्रू।
और जो पुरानी चीज़ें हैं, चाहे टेक्नोलॉजी है, आज के समय में अगर कोई आपसे कहे कि आप टाइपराइटर के साथ टाइप करें और अगर एक गलती हो जाए तो पूरा फिर से जीरो से टाइप करनी शुरू करें, तो आप शायद कहेंगे नहीं, अभी तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो उसी तरह से अगर आपको कोई एक नए ढंग से जीने की कला मिल रही है, उसको एक्सपेरिमेंट करना और उसको उस हद तक लेना एटलीस्ट जिस हद तक आप कंफर्टेबल हैं। स्पिरिचुअलिटी अगर कहती है कि आप पूरी तरह से जीवन से संन्यास ले लो, वो एक बहुत, जैसा आपने खुद कहा, बहुत बहुत मिनिस्क्यूल, बहुत थोड़े कम परसेंटेज में, और वो लोग जिनका कि अब ध्यान है कि इस पूरे जीवन से हटना है। और कोई भी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स नहीं चाहेंगे कि हर व्यक्ति संन्यास ले, क्योंकि उनको रखने का, उनको खिलाने का जिम्मा कौन लेगा।
ट्रू, एब्सोल्युटली।
तो इसीलिए आप उसी दुनिया में रहकर वही काम कर लेकिन उसको एक अलग ढंग से करके अगर जीवन को सुखी और खुशनुमा और आनंदमय और शांतिपूर्वक बना सकते हैं
जी,
ये उन प्रैक्टिसेस को करने की बात है।
ओके।
और उसमें मैं समझता हूँ कि ना तो कोई एज होती है, ना कोई धर्म होता है, ना किसी तरह की प्रॉब्लम दूसरों को इस बारे में आनी चाहिए।
जी डॉक्टर साहब, हमने कई सारी बातें की, लेकिन मुझे सबसे गहरी बात ये लगी कि अगर हमें मेडिटेशन को या स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है तो उसके लिए हमें अपने अंदर में ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उसको अपने आप को समर्पण कर देना है। तो हम महसूस करेंगे कि उस गहराई में जाकर जो मोती निकलेंगे वो मोती अमूल्य होंगे, और कहीं ना कहीं जो एक संतुष्टता होनी चाहिए ज़िंदगी में एज अ यूथ भी, वो हमें मेडिटेशन के थ्रू ही मिलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
ओम शांति एंड थैंक्स अ लॉट।
यू आर वेलकम। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी यूथ को एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में मदद करता है। हमने जाना कई सारी ऐसी भ्रांतियां जो थी मेडिटेशन को लेकर के, वो हमने आज सुलझने की कोशिश की। हमने साथ ही साथ ये भी जाना कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा परहेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़, आपको सन्यासी बनने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने आप को एक एक्सपीरियंस में लेके जाने की ज़रूरत है, एक ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस जो आपकी ज़िंदगी को सदा के लिए बदल देगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।